एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम इतिहास की दुनिया में गोता लगा रहे हैं, लेकिन जरा अलग अंदाज में।
हाँ बिल्कुल, हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास लिखा कैसे जाता है। ना
सही कहा। और ये आज इतना जरूरी क्यों है?
देखिए, आजकल जानकारी का मतलब एक सैलाब सा है।
सही,
वो
हाँ।
सही भी गलत भी।
हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह।
तो ऐसे में ये समझना कि अतीत की कहानियां कौन गढ़ रहा है, कैसे गढ़ रहा है और क्यों, ये हमें आज को समझने में मदद करता है।
और इस सफर में हमारी गाइड है एक छोटी सी पर बहुत काम की किताब, जॉन एच आर्नल्ड की हिस्ट्री अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
हाँ, ये किताब वाकई आंखें खोल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं।
पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जॉन एच आर्नल्ड
जी, वो ब्रिटेन के जाने माने इतिहासकार हैं। मध्यकालीन यूरोप, खासकर वहां के धर्म और समाज, ये उनकी विशेषज्ञता है।
हाँ, और उन्होंने कैम्ब्रिज, बर्गबैक जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया भी है।
और ये जो वो मध्यकालीन इतिहासकार है ना, यही बात उन्हें खास बनाती है इस विषय पर लिखने के लिए।
वो कैसे?
सोचिए, मध्य युग का इतिहास लिखने वाले किन चीजों से जूझते हैं? सबूत बिखरे हुए, अधूरे।
हाँ, अक्सर किसी एक पक्ष की तरफ झुके हुए भी होते हैं। मतलब राजा का नजरिया तो मिल जाएगा, पर आम आदमी का क्या?
बिल्कुल, और दस्तावेज भी कई बार समझने मुश्किल होते हैं। उनके पास आज की तरह फाइलों के ढेर नहीं होते।
सही, उन्हें तो जैसे टूटे शीशे के टुकड़ों से जोड़कर तस्वीर बनानी पड़ती है।
तो उन्हें सबूतों की सीमाओं का और हर चीज की व्याख्या करने की जरूरत का बहुत गहरा अंदाजा होता है।
हाँ, वो जानते हैं कि कम जानकारी से मतलब कैसे निकाला जाए। तो जब वो बताते हैं ना कि इतिहास कैसे बनता है,
तो लगता है जैसे कोई कारीगर अपने औजार दिखा रहा हो।
बिल्कुल, वो बताते हैं कि ये कितना महीन और पेचीदा काम है।
अच्छा, तो अब आते हैं किताब पर, हिस्ट्री अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये क्या है असल में?
देखिए, जैसा आपने कहा, ये घटनाओं की लिस्ट नहीं है, ये एक तरह से क्या कहते हैं, यूजर मैनुअल है इतिहास को समझने का।
अच्छा, यूजर मैनुअल, ये दिलचस्प है।
हाँ, ये बताती है कि इतिहास गढ़ने की प्रक्रिया क्या है और इसका सबसे बड़ा आइडिया क्या है।
बताइए।
कि इतिहास कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि तथ्य जमा कर दिया और हो गया।
नहीं, तो फिर क्या है?
ये तो एक लगातार चलने वाली बहस है, पूछताछ है, सवाल है, तर्क है, एक जिंदा प्रक्रिया है।
अच्छा, तो ये उस आम सोच को चुनौती देती है कि इतिहास मतलब बस जो हुआ उसका रिकॉर्ड।
बिल्कुल, ये एक बुनियादी सवाल उठाती है, इतिहास असल में है क्या?
हम तो अक्सर यही सोचते हैं ना कि इतिहास मतलब सच्ची घटनाएं जो बस हमें पता करनी है, ऑब्जेक्टिव सच।
हाँ, और आर्नोल्ड इसी सोच को तोड़ते हैं। वो दिखाते हैं कि इतिहासकार का काम कितना कितना उनके अपने नजरिए से जुड़ा होता है, व्याख्या पर आधारित होता है
और कभी कभी विवादों से भरा भी।
हाँ, ये किताब दरअसल इतिहास लेखन यानी हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लिखने के तरीकों का अध्ययन, उसे आम लोगों के लिए आसान बनाती है।
चलिए अब किताब के अंदर चलते हैं। पहला अध्याय, सवाल सवाल।
हाँ, ये शुरू में ही हमें चौंका देता है, हमारी बनी बनाई धारणाओं पर सवाल उठाता है।
क्या पूछता है ये?
बुनियादी सवाल, इतिहास क्या है, ये किसके लिए है, इसका मकसद क्या है, अतीत हमारे लिए मायने क्यों रखता है।
ये हमें रटी रटाई बातों से आगे सोचने को कहता है।
इसका मेन आइडिया ये है कि इतिहास याद करने के लिए फैक्ट्स का ढेर नहीं, बल्कि खोजने के लिए सवालों का एक गुच्छा है।
और वो ये भी दिखाते हैं कि कैसे एक ही घटना की कहानियां अलग अलग हो सकती हैं।
हाँ बिल्कुल, अलग अलग लोग अलग अलग समय में उसी घटना को अलग तरह से देखेंगे, अलग तरह से सुनाएंगे।
और यहीं से वो इतिहास लेखन यानी हिस्टोरियोग्राफी की बात शुरू करते हैं कि कैसे वक्त के साथ इतिहास लिखने के तरीके बदले हैं।
बिल्कुल, दूसरा अध्याय हमें इसी सफर पर ले जाता है, बहुत पुराने से बहुत नए तक।
कहां से शुरू होती है ये कहानी?
प्राचीन यूनान से। दो बड़े नाम, हेरोडोटस और थ्यूसिडाइड्स।
हाँ, सुना है इनके बारे में, क्या फर्क था दोनों में?
हेरोडोटस ज्यादा फैल कर लिखते थे, कहानियां, किस्से, संस्कृतियां, यहां तक कि सुनी सुनाई बातें भी शामिल कर लेते थे।
अच्छा, मतलब वो कहानी कहने पर ज्यादा जोर देते थे।
हाँ, जबकि थ्यूसिडाइड्स ज्यादा फोकस्ड थे, राजनीतिक और सैन्य घटनाओं का विश्लेषण करते थे। वो एक तरह से ज्यादा सटीक, ज्यादा आधिकारिक इतिहास लिखना चाहते थे।
तो यहीं से वो तनाव शुरू हो गया, कहानी की चौड़ाई बनाम विश्लेषण की गहराई।
बिल्कुल सही, ये कश्मकश आज भी चलती है। फिर हम मध्य युग में आते हैं, जहां इतिहास को अक्सर ईश्वर की मर्जी से जोड़कर देखा गया।
और फिर पुनर्जागरण, रेनेसा।
हाँ, तो फिर से पुराने यूनानी और रोमन लेखकों पर ध्यान गया, और फिर 19वीं सदी में आए जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन रांके।
हाँ, इनका नाम तो सुना है, इन्हें मॉडर्न हिस्ट्री का पितामह जैसा कुछ कहते हैं ना?
जी, उनका नारा था इतिहास को वैसे लिखो जैसा वो वास्तव में था, वी एस आइगेंटलिख गिवेजन।
इसके लिए उन्होंने किस चीज पर जोर दिया?
मूल स्रोतों पर, सरकारी दस्तावेज आर्काइव्स, उनका सख्ती से विश्लेषण करना।
इससे इतिहास ज्यादा व्यवस्थित तो हुआ होगा।
हाँ हुआ, लेकिन यहीं से वो वस्तुनिष्ठता का मिथक भी पनपा कि इतिहास पूरी तरह वैज्ञानिक और निष्पक्ष हो सकता है, जैसे कि कोई लैब एक्सपेरिमेंट हो।
अच्छा, और फिर 20वीं सदी में
बड़े बदलाव आए। फ्रांस का एनाल्स स्कूल सामने आया, उन्होंने कहा भाई राजा रानी और लड़ाइयों से हटो।
तो फिर किस पर ध्यान दिया?
आम लोगों की जिंदगी पर, उनकी सोच, उनके रहन सहन, लंबे समय तक चलने वाले सामाजिक आर्थिक बदलाव, ये सामाजिक इतिहास था।
ये तो बहुत बड़ा बदलाव था।
हाँ, और फिर आया उत्तराधुनिकतावाद, फूको जैसे विचारक, उन्होंने तो इस पर ही सवाल उठा दिया कि क्या कोई भी इतिहास पूरी तरह सच्चा हो सकता है।
मतलब
उनका कहना था कि हर इतिहास किसी न किसी नजरिए से लिखा जाता है और अक्सर उसमें ताकतवर लोगों का नजरिया हावी रहता है, कोई भी वर्णन पूरी तरह निष्पक्ष नहीं हो सकता।
ये तो सोचने वाली बात है। अब आते हैं तीसरे अध्याय पर, सत्य और तथ्य। ये तो बड़े भारी शब्द हैं।
हाँ, लेकिन आर्नोल्ड ने बड़े सरल तरीके से समझाते हैं। पहला सवाल, ऐतिहासिक तथ्य क्या है?
क्या है?
देखिए, कोई भी जानकारी अपने आप में तथ्य नहीं होती। वो ऐतिहासिक तथ्य तब बनती है जब कोई इतिहासकार उसे चुनता है, उसे अहमियत देता है और अपने तर्क के लिए इस्तेमाल करता है।
उदाहरण?
जैसे किसी राजा की मौत की तारीख। ये बस एक तारीख है, लेकिन जब इतिहासकार बहता है कि इस तारीख को राजा की मौत हुई और इसकी वजह से गद्दी के लिए जंग छिड़ गई, तब ये एक ऐतिहासिक तथ्य बन जाता है, क्योंकि अब इसका एक मतलब है, एक कहानी से जुड़ाव है।
अच्छा, और सच के बारे में क्या?
आर्नोल्ड दो तरह के सच बताते हैं। एक है छोटी तथ्यात्मक सच्चाई, मतलब नाम तारीखें सही हैं या नहीं,
ठीक है।
दूसरा है बड़ा व्याख्या वाला सच, मतलब घटनाओं का मतलब क्या था, वो क्यों हुई, इसकी एक ठोस सबूतों पर आधारित समझ देना, और यही इतिहासकार का असली काम है।
ये तो मुश्किल काम लगता है।
है, उन्होंने कोर्ट केस का उदाहरण दिया है। सोचिए दो वकील हैं, हो सकता है वो कुछ बुनियादी तथ्यों पर सहमत हों कि घटना कहाँ हुई, कब हुई।
हाँ।
लेकिन उन्हीं तथ्यों से वो बिल्कुल अलग अलग कहानी बनाएंगे अपने मुवक्किल को बचाने या फंसाने के लिए। इतिहासकार भी सबूतों से एक मुमकिन कहानी बनाते हैं।
पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कुछ भी कहानी गढ़ सकते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। यही आर्नोल्ड अनुशासित व्यक्तिपरकता की बात करते हैं।
ये क्या है?
इसका मतलब है इतिहासकार ये माने कि हाँ, उसका अपना नजरिया है, वो पूरी तरह निष्पक्ष नहीं हो सकता, लेकिन वो पूरी ईमानदारी और सफाई से बताए कि वो किस सबूत के आधार पर किस तरीके से अपनी बात कह रहा है।
मतलब पारदर्शिता।
बिल्कुल।
काम करने का तरीका साफ होना चाहिए, यही अनुशासन है।
ठीक है, अब चौथा अध्याय, आवाजें और खामोशियां।
ये स्रोतों यानी सोर्सेस के बारे में है।
हाँ, और सबसे पहली बात, स्रोत कभी न्यूट्रल नहीं होते, उन्हें किसी ने किसी मकसद से किसी खास समय में बनाया है।
तो हमें उन्हें कैसे देखना चाहिए?
आर्नोल्ड कहते हैं स्रोतों को उनकी मंशा के खिलाफ पढ़ो, रीडिंग अगेंस्ट द ग्रेन।
ये क्या मतलब हुआ?
मान लीजिए राजा का कोई फरमान है, वो तो राजा की मंशा दिखाएगा, शायद वो अपनी तारीफ कर रहा हो।
हाँ?
लेकिन इतिहासकार उसे पलट कर पढ़ेगा, सोचेगा ये फरमान क्यों जारी किया गया, क्या कोई डर था, कोई मजबूरी थी, इसके पीछे की छुपी हुई बात क्या है।
अच्छा, मतलब जो लिखा है उसके पीछे का सच ढूंढना।
हाँ, और फिर आती है सबसे बड़ी चुनौती, अभिलेखागार में खामोशियां, साइलेंसेस इन द आर्काइव।
इसका क्या मतलब है?
मतलब रिकॉर्ड में किन लोगों की बातें है ही नहीं, ज्यादातर तो राजा, मंत्री, अमीर, पढ़े लिखे मर्द, इन्हीं की बातें मिलती हैं।
और बाकी सब?
आम लोग, औरतें, किसान, दलित, आदिवासी,
उनकी आवाजें अक्सर गायब होती हैं, या अगर मिलती भी हैं तो किसी और के नजरिए से, जैसे किसी सरकारी रिपोर्ट में किसी किसान का जिक्र आ गया, पर वो किसान खुद क्या सोचता था ये जानना मुश्किल है।
ये तो बहुत बड़ी समस्या है।
हाँ, इसीलिए आज के इतिहासकारों का एक बड़ा काम इन दबी हुई आवाजों को खोजना है।
कैसे खोजते हैं?
उन्हें लीक से हटना पड़ता है। लोक कथाएं, गाने, पुरानी चीजें, आर्कियोलॉजी, यहाँ तक कि किसी पर चले मुकदमे के रिकॉर्ड भी काम आ सकते हैं।
दिलचस्प।
और ये भी याद रखना है कि किसी दस्तावेज में जो नहीं लिखा गया वो खामोशी भी बहुत कुछ कह सकती है। इतिहासकार यहाँ जासूस की तरह सुराख जोड़ता है। टिव के बारे में है।
हाँ।
आर्नोल्ड कहते हैं कि इतिहासकार सिर्फ तथ्य नहीं परोसते, वो उन्हें एक कहानी में बुनते हैं। और ये कोई कमजोरी नहीं है।
क्यों नहीं?
क्योंकि हम इंसान दुनिया को और अतीत को कहानियों के जरिए ही समझते हैं। ये हमारे समझने का तरीका है।
उदाहरण क्या दिया है उन्होंने?
बहुत सीधा सा, राजा मर गया और फिर रानी मर गई। ये दो घटनाएं हैं, इतिहास नहीं।
ठीक है,
लेकिन अगर कहें राजा मर गया और फिर रानी उसके गम में मर गई, अब ये इतिहास है, क्योंकि इसमें कारण कार्य का रिश्ता जुड़ गया, एक कहानी बन गई।
हाँ, समझ गई।
इतिहासकार अलग अलग तरह की कहानियों के ढांचे इस्तेमाल करते हैं। तरक्की की कहानी, पतन की कहानी, त्रासदी की कहानी।
और हम कौन सा ढांचा चुनते हैं, इससे मतलब बदल जाता है।
बिल्कुल। तो चुनौती ये है कि हम कहानी कहने की इस ताकत को समझें और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। कहानी सबूतों पर टिकी होनी चाहिए।
छठा अध्याय है बिल्ली की हत्या, एक केस स्टडी। हाँ, ये इन सारी थ्योरी वाली बातों को एक असली केस पर लागू करता है। 1301 के लंदन का मामला।
क्या था मामला?
एक औरत थी, एलियानोर डी मुल्टन। उस पर पति की हत्या का आरोप लगा और उसे मौत की सजा हुई। लेकिन केस में एक बिल्ली का भी जिक्र था कि उसे भी मारा गया।
बिल्ली? ये तो अजीब है।
हाँ, और यही केस दिखाता है कि इतिहासकार का काम कितना मुश्किल है। स्रोत क्या है? अदालत के कुछ रूखे सरकारी दस्तावेज, शायद उनमें लिखने वाले का अपना पक्ष भी हो।
और आवाजें और खामोशियां
साफ दिखती हैं। अधिकारियों की आवाज तो है, पर एलियानोर की अपनी कहानी, वो पूरी तरह गायब है। और बिल्ली, वो क्यों आई बीच में?
क्या मतलब हो सकता है इसका?
पता नहीं, क्या ये सिर्फ गपशप थी जो रिकॉर्ड में आ गई, या इसका कोई गहरा मतलब था? जादू टोना, कोई अंधविश्वास? यही व्याख्या और कहानी कहने का काम आता है।
हाँ, इसी कम जानकारी से अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं।
बिल्कुल। क्या ये सिर्फ हत्या थी या कोई सामाजिक तनाव का इशारा था? ये केस दिखाता है कि सच कितना फिसलन भरा हो सकता है। तथ्य रिकॉर्ड हैं, पर सत्य असली मतलब पकड़ना मुश्किल है।
तो फिर सातवां अध्याय पूछता है, इतिहासकार ढूंढ क्या रहे हैं, मकसद क्या है?
हाँ, और जवाब है कोई एक अकेली अंतिम सच्चाई नहीं। मकसद है समझ और अर्थ ढूंढना।
इतिहास हमें क्या देता है?
कई चीजें। ये हमें दूसरों को, दूसरी संस्कृतियों को समझने में मदद करता है, सहानुभूति बढ़ाता है,
और पहचान बनाने में भी मदद करता है ना, राष्ट्र की, समुदाय की।
हाँ, बिल्कुल। हालांकि आर्नोल्ड ये भी चेतावनी देते हैं कि इसी पहचान का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए भी हो सकता है। ये एक दोधारी तलवार है।
और
इतिहास सामाजिक बुराइयों पर सवाल उठाने का औजार भी है। ये दिखाता है कि जो अन्याय आज है वो हमेशा से नहीं था, उसे बदला जा सकता है।
तो इतिहासकार जिस कुछ की तलाश में है,
वो तैयार जवाब नहीं बल्कि इंसानी समाज की जटिलता, उसकी विविधता को और गहराई से और ईमानदारी से समझने की कोशिश है, लगातार चलने वाली कोशिश।
और आखिर में निष्कर्ष पूछता है, क्या इतिहास सिर्फ इतिहासकारों का काम है?
और जवाब,
नहीं। आर्नोल्ड कहते हैं ऐतिहासिक रूप से सोचना, थिंकिंग हिस्टोरिकली, हम सबके लिए जरूरी है।
क्यों जरूरी है ये?
क्योंकि ये हमें बहुत काम की आदतें सिखाता है। स्रोत पर सवाल उठाना, ये किसने कहा, क्यों कहा,
पूर्वाग्रह पहचानना।
हाँ, किसी बात को उसके संदर्भ में समझना, अलग अलग तर्कों का वजन देखना।
ये सारे हुनर तो आज की दुनिया में बहुत जरूरी है, जहाँ इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, या कहें मिस इन्फॉर्मेशन है।
बिल्कुल, ये हमें गाइड करता है। आर्नोल्ड हमें उकसाते हैं कि हम इस सोच को रोज की जिंदगी में लाएं।
कैसे?
खबरें देखते हुए, सोशल मीडिया देखते हुए, पूछें ये कहानी कौन सुना रहा है, एजेंडा क्या है, कौन गायब है इस कहानी से।
हम अपने परिवार के इतिहास को भी ऐसे देख सकते हैं।
हाँ, ये इतिहास को धूल भरी किताबों से निकालकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाता है। तो इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं, उन पर एक नजर डालें।
हाँ, जरूर।
पहली बात, इतिहास तथ्यों की लिस्ट नहीं, एक बहस है, एक तर्क है। ये हमेशा बदलता रहता है, नई व्याख्याएं आती रहती हैं।
हाँ, तो अगली बार कोई कहे इतिहास गवाह है, तो रुककर सोचें ये किसका तर्क है।
दूसरी, स्रोत कभी मासूम नहीं होते। आवाजें और खामोशियां पहचाने। हर कहानी किसी नजरिए से कही जाती है। हमें पूछना होगा किसका नजरिया है और किसकी कहानी छूट गई।
जैसे हमारे अपने इतिहास में कितने ही समूहों की कहानियां हाशिए पर रही हैं, उन्हें ढूंढना जरूरी है।
तीसरी, पूरी तरह निष्पक्ष होना एक मिथक है, लक्ष्य अनुशासित व्यक्ति पर रखता है। जरूरी है ईमानदारी और पारदर्शिता, बताना कि आप किस आधार पर अपनी बात कह रहे हैं।
चौथी, कहानी कहना इतिहास का दिल है। इतिहासकार तथ्यों को मतलब देते हैं और ये कहानियों के जरिए होता है।
और पांचवी,
इतिहास में ताकत का खेल शामिल है। इतिहास का इस्तेमाल सत्ता बनाने या बिगाड़ने दोनों के लिए होता आया है। हमें देखना होगा कि कौन सा इतिहास किसके हित में है।
ये जो स्रोत और आवाजों वाली बात है ना, ये आज के सोशल मीडिया युग में तो बहुत ही ज्यादा लागू होती है।
हाँ बिल्कुल, एक घटना होती है और 10 तरह की कहानियां चल पड़ती हैं।
ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे पूछें, ये कौन फैला रहे हैं, क्यों, क्या छिपा रहा है। ये फेक न्यूज से बचने में मदद करती है।
किताब में कुछ यादगार विचार भी हैं। पहला, इतिहास अतीत नहीं है, अतीत वो है जो हुआ। इतिहास इस बारे में तर्क है कि क्या हुआ।
हाँ, मतलब घटना और उसकी कहानी, ये दो अलग चीजें हैं।
दूसरा, हर स्रोत एक पहेली है। पूछो ये क्या कहता है, ये क्यों कहता है, किसने बनाया, और सबसे जरूरी, ये क्या नहीं कहता।
ये उन खामोशियों को सुनने पर जोर देता है।
तीसरा, इतिहासकार का लक्ष्य पूरी ऑब्जेक्टिविटी नहीं, बल्कि एक अनुशासित और आत्मजागरूक व्यक्ति परखता है, ईमानदारी की बात।
और चौथा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतिहास का सबसे बड़ा मूल्य शायद ये दिखाना है कि दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी और नहीं ऐसी रहने को मजबूर है, भविष्य बदला जा सकता है।
हाँ, ये उम्मीद जगाता है कि हम बदलाव ला सकते हैं।
तो ये सब हमारी रोज की जिंदगी में कैसे काम आ सकता है?
सबसे पहले तो मीडिया को लेकर ज्यादा सतर्क होना, कोई भी खबर, भाषण, फॉरवर्ड मैसेज, उस पर सवाल उठाना।
कौन कह रहा है, क्यों, सबूत क्या है, कौन सा पक्ष गायब है, यह हमें गुमराह होने से बचाएगा।
और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को समझने में मदद मिलती है। आज की समस्याओं की जड़ें इतिहास में देखना।
हाँ, सिर्फ ऊपरी लक्षण नहीं बल्कि गहरी वजह समझना,
ये हमें बेहतर तरीके से तर्क करना और संवाद करना भी सिखाता है, ऑफिस हो या घर।
और दूसरों के नजरिए को समझने से सहानुभूति बढ़ती है।
हम इसे अपने घर परिवार के इतिहास पर भी लागू कर सकते हैं। कौन सी कहानियां सुनाई जाती हैं, क्यों, किसकी बातें दब जाती हैं।
बिल्कुल, जैसे किसी बहस में नेता इतिहास का हवाला देते हैं तो सोचना कि वो पूरी कहानी बता रहे हैं या सिर्फ अपने मतलब का हिस्सा।
मेरे लिए तो इस किताब से सबसे बड़ी सीख यही थी कि इतिहास कोई ठहरी हुई चीज नहीं बल्कि एक जिंदा बहस है। इसने सच में मेरा नजरिया बदला है।
और मेरे लिए वो खामोशियों का आइडिया, ये सोचना कि कितना कुछ अनकहा रह जाता है, और ये एहसास कि ऐतिहासिक सोच हम सब के लिए कितनी जरूरी है, ये दुनिया को और खुद को समझने का एक ताकतवर औजार है।
बिल्कुल, तो ये थी हमारी आज की ज्ञान गोष्ठी जॉन एच आर्नोल्ड की किताब हिस्ट्री अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन पर। यह हमें सिर्फ पाठक नहीं बल्कि एक जागरूक विचारक बनाती है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक तरफ फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।